शैमुएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 15। अबशालोम का विद्रोह। कुछ समय बाद अबशालोम ने अपने लिए एक रथ, कुछ घोड़े और इनके आगे आगे दौड़ने के लिए 50 दौड़ने वाले जुटा लिए। अबशालोम सुबह जल्दी उठकर नगर फाटक के मार्ग पर खड़ा हो जाता था, जब कभी कोई व्यक्ति अपना विवाद लेकर राजा के सामने न्याय के उद्देश्य से आता था। अबशालोम उसे बुलाकर उससे पूछता था, कहाँ से आ रहे हो? उसे उत्तर प्राप्त होता था, इसराइल के एक वंश से। तब अबशालोम उसे सलाह देता था, देखो तुम्हारी विनती पूरी तरह सटीक और सही है, मगर राजा द्वारा ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया है कि तुम्हारी विनती पर विचार किया जा सके। अबशालोम आगे कहता था, कितना अच्छा होता यदि मैं उस देश के लिए न्याय अध्यक्ष बना दिया जाता, तब हर एक व्यक्ति आकर मुझसे उचित न्याय प्राप्त कर सकता। यदि कोई व्यक्ति आकर उसे नमस्कार करने आता था, वह हाथ बढ़ाकर उसे पकड़कर उसका चुंबन ले लिया करता था। अबशालोम की अब यही रीति हो गई थी कि जो कोई न्याय के उद्देश्य से राजा के सामने जाने के लिए आता था, अबशालोम उसके साथ यही व्यवहार करता था। यह करके अबशालोम ने इसराइल की जनता के हृदय जीत लिया। 4 वर्ष पूरे होते होते अबशालोम ने राजा से कहा, कृपया मुझे हेब्रोन जाने की अनुमति दीजिए, मुझे वहां यहावे से किए गए अपने संकल्प को पूरा करना है। अराम राष्ट्र के गेशूर में रहते हुए आपके सेवक ने यह संकल्प लिया था, यदि यहावे मुझे वास्तव में यरूशलेम लौटा ले आएंगे, मैं हेब्रोन में आकर यहावे की वंदना करूंगा। राजा ने उसे उत्तर दिया, शांतिपूर्वक जाओ। तब अबशालोम तैयार होकर हेब्रोन के लिए चला गया। अबशालोम सारे इसराइल में गुप्त रूप से इस संदेश के साथ दूत भेज चुका था, जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, यह घोषणा करना, हेब्रोन में अबशालोम राजा है। यरूशलेम से अबशालोम के साथ 200 व्यक्ति भी हेब्रोन गए थे, आमंत्रित अतिथि थे। वे काफी मासूमियत से गए थे, उन्हें कुछ भी मालूम ना था कि क्या क्या हो रहा था। अबशालोम ने बलि चढ़ाने के अवसर पर गिलोवासी अहितोफेल को गिलो नगर, जो उनका अपना नगर था, आने का न्योता दिया। अहितोफेल दाविद का मंत्री था। यहाँ अबशालोम के समर्थक की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिससे राजा के विरुद्ध षड्यंत्र मजबूत होता चला गया। यरूशलेम से दाविद का पलायन। एक दूत ने आकर दाविद को यह सूचना दी, इसराइल के लोगों के दिल अबशालोम के साथ हो गया है। यह मालूम होते ही दाविद ने यरूशलेम में अपने साथ के सभी सेवकों को आदेश दिया, उठो, हमें यहां से भागना होगा, नहीं तो हम अबशालोम से बच ना सकेंगे। हमें इसी क्षण निकलना होगा कि हम घिर ना जाए और हम पर विनाश ना आ पड़े और सारा नगर तलवार का आहार ना हो जाए। राजा के सेवकों ने उन्हें उत्तर दिया, सच मानिए महाराज, हमारे स्वामी जो कुछ कहे वह करने के लिए आपके सेवक तैयार हैं। तब राजा निकल पड़े और उनके साथ उनका सारा घर परिवार भी। मगर दाविद ने अपनी 10 उपपत्नियों को घर की देखभाल के उद्देश्य से वहीं छोड़ दी। राजा अपने घर से निकल पड़े और उनके पीछे पीछे सारे लोग भी। चलते हुए वे आखिरी घर तक पहुंचकर ठहर गए। उनके सारे अधिकारी उनके पास से निकलकर आगे बढ़ गए। ये सभी थे केरेथी, पेलेथी और 600 गाथवासी जो उनके साथ गाथ नगर से आए हुए थे। ये सभी उनके सामने से होकर निकले। राजा ने गाथ नगर वासी इत्तई से कहा, आप क्यों हमारे साथ हो लिए हैं? आप लौट जाइए और अपने राजा का साथ दीजिए। वैसे भी आप विदेशी हैं, अपने स्वदेश से निकाले हुए। आप कल ही तो हमारे पास आए हैं, क्या मैं आपको अपने साथ भटकने के लिए विवश करूं? मुझे तो यही मालूम नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं। आप लौट जाइए, ले जाइए अपने भाइयों को अपने साथ। यहावे तुम पर अपना अपार प्रेम और विश्वास योग्यता बनाए रखें। मगर इत्तई ने राजा को उत्तर दिया, जीवित यहावे की शपथ, जहां कहीं महाराज मेरे स्वामी होंगे, चाहे जीवन में अथवा मृत्यु में, आपका सेवक भी वहीं होगा। तब दाविद ने इत्तई से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब गाथवासी इत्तई इन सभी व्यक्तियों के साथ शामिल हो गए, इनमें बालक भी शामिल थे। जब यह समूह आगे बढ़ रहा था, सारा देश ऊंची आवाज में रो रहा था। राजा ने किद्रोन नदी पार की और वे सब बंजर भूमि की ओर बढ़ गए। अबियाथर भी वहां आए और सादोक के साथ सारे लेवी लोग भी। ये अपने साथ परमेश्वर की वाचा का संदूक भी ले आए थे। उन्होंने वाचा के संदूक को उस समय तक भूमि पर रखे रहने दिया जब तक सभी लोग नगर से बाहर ना निकल गए। इसके बाद राजा ने सादोक को आदेश दिया, परमेश्वर की वाचा के संदूक को अब नगर लौटा ले जाओ। यदि यहावे की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रही तो वह मुझे लौटा लाएंगे, तब मैं इस संदूक और उनके निवास का दर्शन कर सकूंगा। मगर यदि यहावे यह कहे, तुम में मेरी कोई भी खुशी नहीं, तो मैं यही हूं कि वह मेरे साथ वही करे जो उन्हें उचित जान पड़े। तब राजा ने पुरोहित सादोक से कहा, सुनिए, आप शांतिपूर्वक नगर लौट जाइए, अपने साथ अपने पुत्र अहिमाज को और अबियाथर के पुत्र योनातन को ले जाइए। यह ध्यान में रहे, तुमसे सूचना प्राप्त होने तक मैं वन में ठहरूंगा। अबियाथर परमेश्वर का संदूक लेकर यरूशलेम लौट गए और वे वहीं ठहरे रहे। दाविद जैतून पर्वत की चढ़ाई चढ़ते चले गए। वह चलते हुए रोते जा रहे थे। उनका सिर तो ढका हुआ था मगर पांव नंगे। उनके साथ चल रहे हर एक व्यक्ति ने भी अपना अपना सिर ढक लिया था और वे भी रोते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर किसी ने दाविद को यह सूचना दी, अहीतोफेल भी अबशालोम के षड्यंत्रकारियों में शामिल है। यह सुन दाविद ने प्रार्थना की, यहावे आपसे मेरी प्रार्थना है, अहीतोफेल की सलाह को मूर्खता में बदल दीजिए। जब दाविद पर्वत की चोटी पर पहुंच रहे थे, जिस स्थान पर परमेश्वर की आराधना की जाती है, अर्की हुशाई उनसे भेंट करने आ गया। उसका बाहरी वस्त्र फटे हुए था और सिर पर धूल पड़ी हुई थी। दाविद ने उससे कहा, सुनो, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मेरे लिए बोझ बन जाओगे, मगर यदि तुम लौटकर नगर चले जाओ और अब शालोम से कहो, महाराज, मैं अब आपका सेवक हूँ, ठीक जिस प्रकार पहले आपके पिता का सेवक था, अब आपका सेवक रहूँ, तब तुम वहां मेरे पक्ष में अहीतोफेल की युक्ति को विफल कर सकोगे। तुम्हारे साथ के पुरोहित सादोक और अबियाथर भी तो वही हैं। राजमहल से तुम्हें जो कुछ मालूम होता है, तुम वह पुरोहित सादोक और अबियाथर को सूचित कर सकते हो। याद है ना, उनके दो पुत्र वहां उनके साथ हैं, अहिमाज सादोक का पुत्र और योनातन अबियाथर का पुत्र। तुम्हें वहां जो कुछ मालूम होता है तुम इनके द्वारा भेज सकते हो। तब दाविद के मित्र हूशाई नगर में आ गए। अबशालोम भी इस समय यरूशलेम आ चुका था।